सगाई का फंक्शन खत्म हो गया था और अगले दिन दोपहर में हल्दी का फंक्शन था और शाम को संगीत का फंक्शन था। सुबह से ही महल में हल्दी और संगीत के फंक्शन की तैयारी हो रही थी और अरुणिमा जानवी के साथ साथ प्रणाली और कीर्ति को भी सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। प्रणाली और कीर्ति तो फिर भी चीजों को सिर्फ देख रही थी, लेकिन जानवी ने तो सारी चीज अरुणिमा के ऊपर ऐसे छोड़ दी थी जैसे कि उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है बल्कि अरुणिमा की बेटी की शादी है, और अरुणिमा ने भी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया था। यही बात तो थी अरुणिमा की जो उसे आज भी सबसे जोड़े रखती है कि वो हर रिश्ते को निभाने में यकीन रखती है। अपने कमरे की खिड़की से आस्तिक अरुणिमा को देख रहा था। वो देख रहा था कि किस तरीके से वो सारी चीजों को मैनेज कर रही थी। यहां आने के साथ ही अरुणिमा ने एक मिनट भी चैन की सांस नहीं ली थी और किसी को देखकर ऐसा लग भी नहीं रहा था कि अरुणिमा सालों से इस घर से दूर रही है। यहां की हर चीज अरुणिमा के लिए ऐसी थी जैसे कि वो अरुणिमा के हाथ की ही थी। जानवी को इतनी टेंशन अमृता की शादी की नहीं हो रही थी बल्कि इस बात की हो रही थी कि वो इस शादी को मैनेज कैसे करेगी। पर जैसे ही उसने अरुणिमा को देखा वैसे उसकी सारी टेंशन एक पल में हवा हो गई। अरुणिमा ने आने के साथ ही घर की जिम्मेदारियां और शादी की बागदौड़ अपने हाथ में ले ली थी। हर बार की तरह इस बार भी अरुणिमा ने ये साबित कर दिया था कि वो एक काबिल महिला है सिंघल की रानी के रूप में। एक सेवक आस्तिक के दरवाजे पर खड़ा होता है। उसने अपना चेहरा नीचे किया हुआ था और वो आस्तिक से कहता है, राजा साहब, हल्दी में पहनने के लिए आपने जो कपड़े मंगवाए थे वो आ गए हैं। आस्तिक बालकनी में खड़ा था और अरुणिमा को देख रहा था। उसने बिना उस सेवक को देखे कहा, ठीक है, बेड पर रख दो और जाओ यहां से। सेवक ने कपड़े बेड पर रख दिए और वो जाने के लिए मुड़ा ही था कि आस्तिक के दिमाग में कुछ आता है और वो कहता है, रुको। सेवक रुक जाता है और अपना चेहरा झुकाकर आस्तिक के सामने खड़ा हो जाता है। आस्तिक उस सेवक को देखता है और बेड पर रखे हुए कपड़ों को देखकर कहता है, एक काम करो, इन कपड़ों को ले जाकर तुम रानी साहिबा के कमरे में रख दो। उस सेवक की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राजा साहब से सवाल जवाब कर सके, इसीलिए उसने तुरंत हाँ में सर हिलाया और आस्तिक के कपड़े उठाकर अरुणिमा के कमरे की तरफ पड़ गया। हालांकि आस्तिक की ये बात उसे अजीब जरूर लगी थी, लेकिन उसने इस बात को जाहिर नहीं होने दिया। पर लगता है आस्तिक के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ अरुणिमा को देखा और अपने इरादों पर खुश होते हुए कहा, आइए रानी साहिबा, आपका स्वागत हो रहा है। आस्तिक जल्दी से अपने कमरे से निकलता है और सीधे अरुणिमा के कमरे में चला जाता है। तो वहीं पर बाहर गार्डन में अरुणिमा ने हल्दी की सारी तैयारी कर ली थी। एक बड़ी सी चौकी के पास उसने हल्दी के बड़े बड़े बर्तनों को रखा हुआ था जहां पर अग्रिता को बिठाकर हल्दी लगाई जाएगी। उसने हल्दी के पानी में फूलों की पंखुड़ियों को रखा था और उस जगह को बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया था। सारा कुछ होने के बाद अरुणिमा ने जानवी से कहा, यहाँ की सारी तैयारी तो हो गई है, अब बस मुझे गोपाल जी को तैयार करके यहाँ लेकर आना है। पहले हल्दी गोपाल जी ही लगाएंगे। जानवी ने हंसते हुए कहा, हाँ भाभी, ठीक है, अमृता को पहली हल्दी गोपाल जी ही लगाएंगे, लेकिन आप अपनी हालत तो देखिए, आपको देखकर गोपाल जी डर जाएंगे। बाल देखिए कितने बिखरे हुए हैं, कौन कहेगा कि आप दुल्हन की बड़ी मम्मी हैं। जाइए जल्दी से कमरे में जाकर अभी तैयार हो जाइए, तब तक आकाश और अनंत आहान के घर से दूल्हे की उतरी हुई हल्दी भी लेकर आ जाएंगे। अरुणिमा ने अपने कपड़ों में से मिट्टी को झाड़ते हुए कहा, बस अनंत गया है, आकाश गया ही नहीं, सुबह गई थी उसके कमरे में ये कहने के लिए कि हल्दी के फंक्शन के लिए हल्दी दूल्हे के घर से आती है। जाकर देखा तो पूरे बेड पर फैलकर सो रहा था। कितनी आवाज दी मैंने उसे, पर उठने को तैयार ही नहीं था, इसीलिए मैंने सिर्फ अनंत को भेज दिया है। अब आकाश उठेगा तो उसे कहूंगी बाकी कामों में मदद करे, बहन की शादी में आया है, मेहमान बनकर थोड़ी न बैठा रहेगा। जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, जाने दीजिए ना भाभी, बेचारा इतने सालों बाद घर वापस आया है, अमेरिका में थोड़ी ना ये सब काम करता होगा, वहां पर तो नौकर होंगे काम करने के लिए, और यहां पर भी नौकर की कमी थोड़ी ना है, लेकिन प्लीज भाभी, आप आकाश को कुछ नहीं कहेंगे। अरुणिमा हैरानी से जानवी को देखती हैं और फिर नाराज होते हुए कहती है, ये बढ़िया है, आस्तिक अनंत को कुछ नहीं कहने देते हैं, और तुम आकाश को कुछ मत कहने दो, सारे बच्चे सब लोगों ने बांट लिए हैं, मुझे तो लगता है मेरा सारा प्यार दुलार सिर्फ मेरी बहू के लिए बचा हुआ है। जानवी अरुणिमा की बात सुनकर हंस देती है, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए कहती है, वैसे भाभी आपने अनंत से बात की भूमि के लिए, आपने उसे बताया कि अमृता की शादी के बाद आप उसकी और भूमि की शादी करवाने वाली हैं। अरुणिमा ने नामे सर हिलाते हुए कहा, नहीं जानवी, अभी तक मौका ही नहीं मिला उसे कुछ बताने का, और उसे क्या बताना है, वो मेरी बात थोड़ी ना टालेगा, देखना जब मैं उसे कहूंगी ना कि मैंने भूमि को उसके लिए चुना है तो वो मेरी बात इनकार कर ही नहीं सकता है, क्योंकि भूमि को कोई इनकार कर दे वो तो बेवकूफ ही होगा। आस्तिक अरुणिमा के कमरे में आया था। उसने जल्दी से कमरे के दरवाजे को हल्का सा लगा दिया, बस दिखने में ऐसा लग रहा था कि कमरा बंद है, लेकिन बंद नहीं था। आस्तिक जल्दी से अपने कपड़े बदलता है और बाथरूम में चला जाता है। अरुणिमा अपने कमरे में आती है, उसने आने के साथ ही दरवाजे को बंद कर दिया। वो अपनी साड़ी में से पिन खोलते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ती है। अरुणिमा बाथरूम में दाखिल होती है और दरवाजा लगाकर दरवाजे की तरफ मुंह करके अपनी साड़ी को उतारने लगती है। अरुणिमा सिर्फ ब्लाउज और शेपवेयर में खड़ी थी। अरुणिमा ने अपने ब्लाउज का पहला हुक खोला ही था कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई बाथरूम में है। इससे पहले कि अरुणिमा पीछे पलटकर देख सकती, आस्तिक अरुणिमा को देखकर ऐसे चिल्लाता है जैसे कि उसने भूत देख लिया है। अरुणिमा ने अपने दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए अपने सीने पर रखा और आस्तिक को देखकर चिल्लाते हुए कहा, आ आ तुम यहाँ क्या कर रहे हो।